अर्जुन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कैसे उनकी ममता पर स्वार्थी होने का दाग लगा सकते हैं? उनके अंश के लिए प्यार और लगाव पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अर्जुन खामोशी से उनकी बात सुनता रहा, फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, मैंने उसकी ममता या अंश के लिए उसके प्यार पर सवाल नहीं उठाया है डैड। आज जो हुआ वो आपने खुद देखा है। अंश और सृष्टि एक दूसरे से इस तरह जुड़ चुके हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और ये ना अंश के लिए ठीक है और न ही सृष्टि के लिए। आज सृष्टि यहाँ आ रही है, कल को उसके घर वालों ने आने से मना कर दिया, या उसकी शादी हो गई तो उसका पति और ससुराल वाले उसे यहाँ आने की इजाज़त नहीं देंगे, और ऐसे में वो वहाँ अंश के लिए तड़पेगी और यहाँ अंश को उसके बिना संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंश कमज़ोरी बन चुका है उसकी, और जब तक वो अंश से मुझसे दूर नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी, और अगर बढ़ गई तो खुश नहीं रह सकेगी। अंश को आदत हो गई है उसकी, और सृष्टि हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए उन दोनों के लिए सही यही है कि वो दोनों अब दूर ही रहें। अंश अभी छोटा है, उसको संभालना आसान होता, और मेरी कही बातों की वजह से सृष्टि भी अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी और दूर रहेगी अंश से। हाँ, अभी उसको थोड़ी तकलीफ होगी, पर आगे ज़िंदगी में वो खुश रह सकेगी, और अंश को आज संभालना भले थोड़ा मुश्किल हो पर कुछ दिनों में उसकी भी आदत छूट जाएगी। अर्जुन गलत तो नहीं था, ठीक ही कह रहा था वो। जिन दो लोगों का साथ होना मुमकिन नहीं, उन्हें वक्त रहते एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, वरना बाद में जब दूरियां आती हैं तो उस इंसान को तोड़ जाती हैं। अमरजीत जी के चेहरे के भाव अब कुछ सामान्य हो गए। उन्होंने परेशान निगाहों से अर्जुन को देखते हुए चिंता भरे स्वर में कहा, हम आपकी बात समझ रहे हैं बेटा, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? जब आप दूसरी शादी करने को तैयार हैं और अंश के लिए माल आना चाहते हैं, तो सृष्टि को अंश से दूर करने की जगह उनसे शादी करके उन्हें अंश की माँ बनाकर भी तो इस घर में ला सकते हैं। उनके जितना प्यार और कोई नहीं कर सकता अंश से, और कोई इतने अच्छे से उन्हें संभाल भी नहीं सकता। अंश उन्हें माँ मानता है और सृष्टि अंश को अपना बेटा, तो उन्हें एक दूसरे से दूर करके दोनों को तकलीफ देने से बेहतर होगा अगर आप सृष्टि से शादी करके उनके रिश्ते को पक्का कर दें और सृष्टि को अपनी पत्नी और अंश की माँ बनाकर इस घर में हमेशा हमेशा के लिए ले आएं। ऐसा नहीं हो सकता डैड। क्यों नहीं हो सकता? जब आपने शादी की बात कही थी तो हमारे मन में पहला ख्याल सृष्टि का ही आया था। वो आपको समझती है, अंश से इतना प्यार करती है, अंश उनसे इतना प्यार करते हैं, फिर क्यों आप उनसे शादी नहीं करना चाहते? आखिर क्या कमी है उनमें जो आप उन्हें अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहते? अमरजीत जी की बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कमी उसमें नहीं मुझ में है डैड, वो तो इतनी अच्छी है कि जिसका रिश्ता उससे जुड़ेगा वो खुशकिस्मत होगा, पर वो खुशनसीब इंसान मैं नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ आपको मुझ में कोई कमी नहीं दिखती होगी, पर आप सिर्फ मेरे डैड बनकर सोच रहे हैं। सृष्टि के पेरेंट्स और फैमिली की नज़र से सोचने की कोशिश कीजिए डैड, तब शायद आपको अंदाज़ा हो कि मैं असल में उसके लायक नहीं हूँ। सृष्टि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है जिसे उन्होंने प्यार से पाला है। वो सुंदर है, यंग है, स्मार्ट है, उसको कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, और उसके पेरेंट्स उसका भाई उसके लिए बेस्ट लड़का ही चाहते होंगे जो सिर्फ उसका बनकर रहे, जिसका कोई अतीत ना हो, जिसके सारे प्यार पर सिर्फ सृष्टि का अधिकार हो। मैं वो लड़का नहीं हो सकता। वो क्यों सृष्टि की शादी एक ऐसे लड़के से करवाएंगे जो पहले से शादीशुदा हो, जिसका डिवोर्स हो रखा हो और जिसका एक बच्चा भी हो? हमारा साथ में कोई भविष्य हो ही नहीं सकता। वो मुझसे लाख गुना बेहतर लड़का डिजर्व करती है और उसे मिलेगा भी। सृष्टि के लिए यही ठीक है कि वो मुझसे और अंश से अब दूर रहे, इसलिए अब आप उसे ना तो यहाँ बुलाएंगे और ना ही इस बारे में मुझसे कोई बात करेंगे। अर्जुन पूरी बात बोलकर और अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चला गया। अमरजीत जी खड़े ही रह गए। वो अर्जुन की कही बातों के बारे में गहराई से सोचते रहे, फिर खुद से ही बोले, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। सृष्टि का रिश्ता आपसे और अंश से जुड़ चुका है, और अब उस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आप कितनी ही कोशिश करें पर होनी को बदल नहीं पाएंगे। अंश की माँ सृष्टि ही बनेंगी क्योंकि वही इसके काबिल है। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और अपने कमरे में चले आए। डिनर के वक्त दोनों आमने सामने बैठे पर उनकी कोई बात नहीं हुई। अर्जुन ने खामोशी से थोड़ा सा खाना खाया और उठकर चला गया। दूसरी तरफ सृष्टि सारे रास्ते किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हुए बाइक चलाती रही। घर पहुंचकर उसने पार्किंग में बाइक खड़ी की और अंदर चली आई। उसने सीधा सीढ़ियों की तरफ रुख किया। हॉल में रजनी जी के साथ बैठी वृंदा जी ने आज उसको जल्दी आते देखा तो कुछ हैरान हो गई। रश्मि के अलावा कोई नहीं जानता था कि सृष्टि रोज ऑफिस से जल्दी निकलकर अंश से मिलने जाती है। शायद बाकी लोग उसको जाने नहीं देते, इसलिए सृष्टि ने किसी को बताया नहीं था, पर रश्मि से कुछ नहीं छुपाती थी वो, इसलिए उसको सब बताया हुआ था। सृष्टि को सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर वृंदा जी ने उसको पीछे से आवाज दी, सृष्टि बेटा आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई। सृष्टि जिसकी आंखें बस छलकने ही वाली थी, उसने किसी तरह खुद को संभाला और लबों पर फीकी मुस्कान सजाए उनकी तरफ पलटते हुए बोली, जी मॉम, जल्दी काम हो गया तो जल्दी आ गई। चलिए अच्छी बात है, आप मुंह हाथ धोकर आइए, हम आपके खाने को कुछ बना देते हैं। रिंदा जी की बात सुनकर सृष्टि ने इनकार करते हुए कहा, नहीं मॉम, अभी भूख नहीं है, बस थोड़ा थकी हुई हूँ तो कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। रिंदा जी अब कुछ पल उसको निहारती रहीं, फिर चिंतित स्वर में बोली, बेटा आप ठीक तो है? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तो जाकर आराम कीजिए आप। सृष्टि मुस्कुराई और सीधे ऊपर बने अपने रूम में चली आई। उसने रूम में घुसते ही दरवाजा बंद किया। अब तक जिन आंसुओं को उसने अपनी आंखों में जब्त किया हुआ था, अब वो आंसू हर बांध को तोड़कर उसके रुखसारों को भिगाने लगे। उसने पर्स बेड पर पटका और बाथरूम में घुस गई। शावर के नीचे खड़ी वो मुंह पर हाथ रखे फफक फफक कर रो पड़ी। अर्जुन ने आज कुछ न कहकर भी जो कह दिया था, उससे सृष्टि का नाजुक दिल चकनाचूर हो गया था। दर्द उसके सहन शक्ति से कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुका था। जाने कितनी देर तक वो यूं ही अकेले में रोती रही, फिर उसने खुद को संभाला और दृढ़ निश्चय किया कि अब नहीं जाएगी वापस वहाँ। आसान नहीं था अंश के बिना रहना, पर अब उसने फैसला ले लिया था। कपड़े बदलकर वो बेड पर आकर बैठ गई और अपने फोन को निकालकर अंश की फोटोज और वीडियो देखने लगी, जो उसने इन 6 महीनों में बनाई थी। एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने अंश की फोटो को अपने लबों से चूम लिया और मुंह धोकर नीचे चली आई। रश्मि भी नीचे आ चुकी थी। रश्मि के साथ अपने मन को बहलाने में लग गई। डिनर के वक्त ठीक से खाना भी नहीं खाया गया उससे। जैसे तैसे चंद निवाले निकले और मन नहीं है कहकर चली गई। रूम में बेड पर उल्टी पड़ी सूनी निगाहों से सीलिंग को घूरती रही। अर्जुन और अंश के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और एक बार फिर उसकी आंखें भीग गई। रोते रोते ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह सुबह वो अंश से मिलने नहीं गई। सारा दिन ऑफिस में अनमनी सी रही, मन कहीं लग ही नहीं रहा था। रोज की तरह निकलने का टाइम हुआ पर नहीं गई। काम करती रही और बाकी एम्प्लॉयज के जाने के बाद घर के लिए निकल गई।
वो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर अर्जुन की बातों ने उसको अंदर ही अंदर तोड़ दिया था और अंश से दूरी उसकी जीने की इच्छा को मारता जा रहा था। घर पहुंचकर भी वो गुमसुम सी उदास सी रही। खाना भी ठीक से नहीं खाया और अपने रूम में आकर आज फिर रोते रोते सो गई। दूसरी तरफ अर्जुन सारा दिन घर पर अंश के साथ रहा, पर नन्हे अंश को तो सृष्टि का इंतजार था। सुबह सुबह वो नहीं दिखी तो सारा दिन चिड़चिड़ा रहा। शाम को भी जब सृष्टि नहीं आई तो खूब रोया उसके लिए। घुटने पर चलकर जाने कितने बार गेट के पास गया कि वहां से सृष्टि आएगी। उस बच्चे की व्याकुलता और तड़प देखकर अमरजीत जी भावुक हो गए। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से अंश को संभाला। बेचारा बच्चा रोते रोते ही सो गया। आज माला और अर्जुन ने कितनी कोशिश की पर उसने कुछ भी नहीं खाया। दूध भी सोने के बाद नींद में पिया। खैर, पहला दिन जैसे तैसे कट ही गया। उस बात को 5 दिन बीत गए थे। सृष्टि ने न तो अर्जुन को कॉल किया और न ही वहां गई, पर अंश को बहुत मिस करती थी वो। अंश उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था और उसके बिना सब वीरान सा लग रहा था उसे। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली सृष्टि अब गुमसुम और उदास रहने लगी थी। जिसकी बातें कभी खत्म नहीं होती वो अब बमुश्किल कुछ शब्द ही बोलती थी, वरना चुप चुप ही रहती। वो चंचल चहकती चिड़िया थी जो अब एकदम से शांत हो गई थी। ठीक से खाती पीती नहीं थी, जिससे पहले से कमजोर हो गई थी। पूछने पर मुस्कुराकर बात टाल देती। उसके इस व्यवहार से सभी अब परेशान हो चुके थे। काम में भी उसका मन नहीं लगता था। अंश की फोटो देखकर अकेले में खूब रोती, उसकी वीडियो देखकर हंसते हंसते रो पड़ती। अपना दर्द किसी से बांटती नहीं थी और अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। आज भी वो ऑफिस आई, पर अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। शान को पता चला तो उसने उसको घर भेज दिया। डॉक्टर ने आकर उसको चेक किया तो ज्यादा स्ट्रेस के वजह से चक्कर आने की बात कही। बुखार भी था और खाने पीने में लापरवाही की वजह से शरीर भी कमजोर हो गया था। दवाइयां और हिदायतें देकर डॉक्टर चले गए। रेहान इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अभिजीत जी, आलोक जी, रजनी जी, वृंदा जी और रश्मि सब परेशान से लिविंग रूम में बैठे थे। सभी समझ रहे थे कि किसी बात से वो परेशान और दुखी हैं, पर वो कुछ बता ही नहीं रही थी। आज की उसकी हालत देखकर वृंदा जी का सब्र टूट गया और आंखें छलक आईं। इकलौती बेटी जिसे उन्होंने नाजो प्यार से पाला, उसकी ऐसी दशा देखकर उनका भावुक होना लाजमी ही था।